सूर का काव्य वैशिष्ट विजय कुमार रंजन। एक कवि के रूप में सूरदास का हिंदी साहित्य जगत में महत्वपूर्ण स्थान है। उन्होंने अपने काव्य में बाल और किशोर जीवन का उद्घाटन इतनी व्यापकता और गहराई के साथ किया है कि वह हमारी आत्मतुष्टि के लिए अपने आप में परिपूर्ण है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के शब्दों में नोटेड कामा, जिस परिमित पुण्य भूमि में उनकी वाणी ने संचरण किया उसका कोई कोना अछूता न छूटा। श्रृंगार और वात्सल्य के क्षेत्र में जहाँ तक इनकी दृष्टि पहुँची वहाँ तक किसी अन्य कवि की नहीं। बाल चेष्टा के स्वाभाविक मनोहर चित्रों की अधिकता जितनी सूर्य के काव्य में है अन्यत्र कहीं नहीं है। नोटेड कामन। बाल चेष्टा का एक मनोहर उदाहरण दृष्टव्य है। सिखवत चलन जसोदा मैया, अरब राय कर पानी कहा अवती, डगमगाय धरने धरे पैया। सूर का काव्य ब्रजभाषा को उन्नत करता है। इनके काव्य में विभिन्न राग रागिणियों के अंतर्गत भक्त हृदय के भावपूर्ण उद्गार व्यक्त हुए हैं। इन उद्गारों में श्री कृष्ण, गाय, गोकुल, मथुरा, वृंदावन, मधुबन, यमुना, मुरली, गोप, गोपी, राधा, नंद, यशोदा आदि की महत्ता के साथ साथ संपूर्ण ब्रज का लोक जीवन, सभ्यता और संस्कृति मुखरित होकर गुंजायमान हो रही है। सूर का प्रत्येक पद कृष्ण भक्ति में सराबोर है, जो उनके काव्य को एक अद्भुत जीवनदायिनी शक्ति प्रदान करता है। सूर ने अपने ब्रज साहित्य में कृष्ण और उनके आसपास के वातावरण को इस तरीके से प्रस्तुत किया है कि संपूर्ण ब्रज साहित्य सूर की जूठन माना जाता है। निसंकोच कहा जा सकता है कि सूर के काव्य में अतुलित माधुर्य, अनुपम सौंदर्य तथा अगणित सौष्ठव है, जिन्हें हम निम्न बिंदुओं के अंतर्गत करके देख सकते हैं। वस्तु वर्णन। सूर के काव्य को वर्ण विषय की दृष्टि से निम्नलिखित भागों में विभक्त किया जा सकता है। विनय के पद, बालकृष्ण संबंधित मनोवैज्ञानिक पद, कृष्ण के रूप माधुरी संबंधी पद, श्री कृष्ण और राधा के रतिभाव संबंधी पद, वियोग श्रृंगार सहित भ्रमर गीत वाले पद। सूर ने विनय के पदों में उनकी संपूर्ण भूमिकाओं एवं वैष्णव भक्ति संबंधी समस्त नियमों के अनुकूल विनम्रता, निष्कपटता, भक्त की लघुता आदि का निरूपण बहुत ही सजीवता के साथ किया है। इन पदों में सूर ने अपने सभी अपराधों और दोषों को स्वीकार किया है। सूर के बाल जीवन संबंधित जो पद हैं वहाँ सूर ने अपनी अनूठी कला का प्रदर्शन किया है। उन्होंने अपने पदों में श्री कृष्ण के बाल जीवन का ऐसा जीवंत चित्रण किया है जिनमें मनोवैज्ञानिकता के पुट के साथ साथ सरसता एवं मोहनीयता बहुतायत उपलब्ध है। श्री कृष्ण के रूप माधुरी संबंधी पदों में सूर ने अपने आराध्य देव के अनुपम सौंदर्य का चित्र इस खूबी के साथ उकेरा है कि दर्शनार्थी उसके वशीभूत हो जाता है। सूर के सौंदर्य वर्णन की इसी खूबी ने अनेक कृष्ण भक्तों को जन्म दिया। सूर ने सौंदर्य के लिए जिस आलम्बन का चुनाव किया उनसे पहले अन्य किसी कवि ने नहीं किया। श्री कृष्ण राधा के रतिभाव संबंधी पदों में सूर ने कृष्ण के साथ साथ राधा को भी महत्व प्रदान किया है। उन्होंने राधा को आराध्य देवी के रूप में प्रतिष्ठित किया है। कृष्ण और राधा को एक दूसरे का पूरक बताते हुए उन्हें युगल मूर्ति का रूप दिया है। मुरली संबंधी पदों में सूर ने मुरली को साधारण मुग्धकारी वाद्य यंत्र के रूप में न प्रस्तुत करके उसे विशिष्टता प्रदान की है। उन्होंने मुरली को योग माया का स्थान दिया है। गोपियाँ जीवात्मा का प्रतीक है और कृष्ण ब्रह्म का। इन दोनों के मिलन में मुरली सेतु की भूमिका अदा करती है। मुरली गोपियों के ईर्ष्या का विषय भी है क्योंकि ब्रह्म रूपी कृष्ण की वे एकनिष्ठ उपासिका है और मुरली सदैव कृष्ण के समीप रहती है। विरह वर्णन के अंतर्गत आए हुए वियोग वर्णन के अंतर्गत आए हुए भ्रमर गीत संबंधी पदों में सूर कला के सर्वोच्च शिखर पर विराजमान है। इन पदों में सूर ने गोपियों की वचन वक्रता, वाग विदग्धता, प्रेमातिरेक, व्यंग विनोद, सहजता, चपलता, चल्लाहट, उद्धव संदेश, उपालम्ब, हास परिहास आदि का चित्ताकर्षक वर्णन किया है। भाव एवं रस निरूपण। सूर काव्य में भावों की अनेक नदियां आकर मिलती हैं, जैसे क्षोभ, स्पर्धा, प्रेम, शोक, विस्मय, भय, ईर्ष्या, असूया आदि। सूर के पदों में भावों के व्यंजना व्यवस्थित ढंग से हुई है। भावों के साथ साथ विविध रसों का जीवंत चित्रण सूर के पदों में विद्यमान है। कृष्ण के प्रति गोपियों का प्रेम एकनिष्ठ है। गोपियों की मनोदशा का चित्रण करते हुए सूर ने प्रेम की गहनता, गुरुता एवं महत्ता का बड़ा ही सजीव प्रतिपादन किया है। कृष्ण विरह में लीन गोपियों की व्यथा का चित्रण सूर ने किया है। गोपियां उद्धव से कह रही हैं, अखियां हरि दर्शन की भूखी, कैसे रहे रूप रस रांची, ये बतियां सूनी रूखी। बालकों के हृदयस्थ मनोभावों का चित्रण सूर ने बड़े मनोयोग से किया है। बालकों की खींच, पारस्परिक प्रतिस्पर्धा, बुद्धि चातुर्य, भोले भाले तर्क आदि का विशद चित्रण सूर के काव्य में मिलता है। माता यशोदा उन्हें दूध पीने के लिए मनाती हुई लालच देती हैं कि दूध पीने पर उनकी चोटी बढ़ जाएगी। कृष्ण उनकी बात मानकर एक हाथ से चोटी पकड़कर और दूसरे हाथ से दूध का गिलास पकड़कर माता यशोदा से पूछने लगते हैं, मैया कब ही बढ़ेगी चोटी, कितनी बार मुहे दूध पियत भैया, यह अजहू है छोटी। इस पद में स्पर्धा का अत्यंत मनोरम भाव उद्घाटित हुआ है। ऐसे ही क्षोभ नामक भाव का एक चित्र दर्शनीय है। खेलत में को काको गुसैया, हरिहारे जीते श्री दामा, बरबस ही कत करत ऋषैया। इस प्रकार सूर के पदों में विभिन्न भावों से संबंधित अनेक चित्र भरे पड़े हैं, जिनका चित्रण सूर ने बड़ी ही कुशलता एवं निपुणता के साथ किया है। विभिन्न भावों के चित्रण की भांति ही सूर ने बड़ी ही निपुणता के साथ विविध रसों की मनोरम झांकी प्रस्तुत की है। कुछ महत्वपूर्ण रसों के उदाहरण देखिए। संयोग सिंगार, तुम पै कौन दुहावे गैया, इत चितवत उत धार चलावत, यही सिखयो है भई मैया। वियोग श्रृंगार, पियाबुन नागिन कारी रात, कबहू जामिनी होत जुनैया, इसी उल्टी है जात। आस मैया मह नहीं माखन खायो, वात्सल किलकत कान घुटरुवन यावत। इसी प्रकार सूर के पदों में करुणा, रौद्र, वीर, भयानक, विभत्स, अद्भुत, शांत आदि रसों का सुंदर समन्वय स्थापित हुआ है। इसके भाव एवं रस निरूपण में सरलता एवं स्वाभाविकता अधिक मात्रा में दिखाई देती है। सूर के भाव एवं रस निरूपण की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि उसमें उक्ति वैचित्र एवं वाक् वैदग्ध की प्रचुरता है। इस संदर्भ में आचार्य शुक्ल ने लिखा है, सूर ने जितनी सहजता और भावुकता है उतनी वाक् विदग्धता भी है। सूर के भाव एवं रस निरूपण की पुष्टि शुक्ल जी के उपरोक्त कथन से हो जाती है। प्रकृति चित्रण, महाकवि सूरदास ने अपने काव्य में प्रकृति को महत्वपूर्ण स्थान दिया है। सूर का समस्त काव्य प्रकृति के प्रांगण में निर्मित है। इनके पदों में यमुना और उसके कछार, कदम और करील, पर्वत और समतल मैदान, पशु पक्षी, पेड़ पौधे आदि का अनेक बार वर्णन हुआ है। कृष्ण का विकास जैसे ब्रज की प्रकृति में होता है, उसी प्रकार सूर साहित्य का विकास भी ब्रज प्रकृति की छाया में ही होता है। ब्रज की प्रकृति में उन्हें केवल उपमानों और अपेक्षाओं के लिए ही सामग्री नहीं दी है, वह अनेक काव्य के केंद्र में प्रतिष्ठित हुई है। ब्रजभूमि से सूर का विशेष लगाव है। वहाँ के वन और उनमें राधा के साथ गोपियों का विहार, वंशीवट, यमुना, लता एवं तरकुंजों में झूलने का आनंद, इस सब का वर्णन सूर ने अपने पदों में किया है। सूर के काव्य में प्रकृति विविध रूप में प्रस्तुत हुई है। प्रकृति कहीं रासलीला में सहायक है, रास के पृष्ठभूमि में प्रकृति की शोभा भी नया रूप धारण करती है। कहीं प्रकृति संयोग के क्षण में सुख प्रदान करती है तो कभी वियोग में यही प्रकृति दुखदायी हो जाती है। सूर ने प्रकृति का चित्रण उद्दीपन रूप में भी किया है। कारण यह है कि स्वयं प्रकृति भी कृष्ण के विरह में व्यथित है। जिस दिन से कृष्ण गए हैं प्रकृति का नियमित क्रम भंग हो गया है। सूर के प्रकृति चित्रण में हर संभव उदाहरण मौजूद है। ग्राम्य जीवन की विविध ध्वनियां सूर के प्रकृति वर्णन में समाहित है और इसमें हमारी लोक और संस्कृति मुखरित हो उठी है। सूर का प्रकृति वर्णन भक्तिकालीन कवियों में सर्वाधिक मौलिकता लिए हुए है। अलंकार योजना, सूर ने अपने पदों में अलंकारों का प्रयोग किया है, उनका उद्देश्य कविता को अलंकारों से लादना नहीं था। उन्होंने स्वाभाविक रूप में अलंकारों का प्रयोग किया है। अलंकारों का प्रयोग सूर ने बहुत ही संतुलित तरीके से किया है। सौंदर्य निरूपण में वे उपमा, उत्प्रेक्षा, रूपक आदि अलंकारों का खुलकर प्रयोग करते हैं, तो योग प्रेम आदि के लिए निदर्शना, तुल्योगिता, दृष्टांत आदि का। आचार्य शुक्ल के शब्दों में, अंग शोभा और वेशभूषा आदि के वर्णन में सूर को उपमा देने की झक सी चढ़ जाती है और वे उपमा पर उपमा, उत्प्रेक्षा पर उत्प्रेक्षा कहते चले जाते हैं। नोटेड काम, सूर के पदों में अलंकार यथास्थिति आते चले जाते हैं और सौंदर्योद्घाटन के लिए सहायक सिद्ध होते हैं। सूर्य कृष्ण को कहीं कमल नयन से उपमित करते हैं, कहीं मधुकर से, कहीं वे उन्हें घनश्याम बताते हैं, श्याम घन बताते हैं। सूर्य के पास उपमाओं का अक्षय कोश है। सूर्य के पदों में चित्रित अलंकारों के कुछ उदाहरण निम्न हैं। रूपक, उदो हरिगुण हम चकडोर, सुनो सुभागो ज्यों फेरो, यह बात हो और। उपमा, सुनते ही जोग लगत ऐसो अली, ज्यों करें ककरी। उत्प्रेक्षा, जब मैं हरिश्वंदेश तिहारो, सुनत तामरो आयो, फूले ब्याल दूरे ते प्रगटे, पवन पेट भरी खायो। अतिशयोक्ति, ऊंचे बैठ विहंग सभा विच कोकिल मंगल गायो, निक सिकंदरा ते के हरि छू माथे पूछ हिलायो। सूर के अलंकार योजना में भावानुकूलता के साथ साथ सहृदयता एवं वाक विदग्धता का प्राधान्य है। उन्होंने अपने पदों में बेवजह अलंकारों का प्रयोग नहीं किया है। ध्वन्यात्मकता के लिए अनुप्रास, संगीतात्मकता एवं भाव सौंदर्य की सृष्टि के लिए शब्दालंकार का प्रयोग किया है। इसी प्रकार उन्होंने उपमा, उत्प्रेक्षा, रूपक आदि सादृश्य मूलक अलंकारों की योजना करके अपने काव्य की रमणीयता एवं सौंदर्यानुभूति की गहनता का परिचय दिया है। प्रतीक योजना, सूर के काव्य में मुख्यतः निम्न प्रतीक उपलब्ध होते हैं। दार्शनिक प्रतीक, कथात्मक धार्मिक प्रतीक, काव्यात्मक धार्मिक प्रतीक, दृष्टिकूट पद परक प्रतीक। सूर्य के दार्शनिक प्रतीक पौराणिक एवं धर्मशास्त्री हैं। इन्होंने सगुण और निर्गुण दोनों साधनाओं से अपने प्रतीक चुने हैं। सूर्य ने अपने विनय के पदों में गाय, कृष्ण, राधा, गोपियाँ, मुरली आदि का प्रयोग किया है, तो क्रमशः माया, ब्रह्म, आत्मा, देह, योग माया का प्रतीक है। कथात्मक प्रतीक, वेणुगीत, दानलीला, मानलीला, रासलीला, चीरहरण आदि कथा प्रसंगों के सारत्व को व्यंजित करते हैं। वेणुगीत से ब्रह्म के परमात्मक स्वरूप का बोध होता है। चीरहरण लीला में चीर लोकलाज का प्रतीक है। दान लीला में दान प्रतीक है सर्वांग समर्पण का। सूर का काव्यात्मक प्रतीक परंपरागत और स्वनिर्मित दोनों तरह के हैं। राजक्रीड़ा में कृष्ण एवं राधा एक दूसरे से धन दामिनी की तरह लिपटे हैं। धन कृष्ण का एवं दामिनी राधा का प्रतीक है। दृष्टिकूट परक प्रतीक दूरस्थ अर्थ तक ले जाते हैं। यह अधिकतर अलंकारों के माध्यम से ले लाए जाते हैं। भाषा, सूर ने अपने काव्य का आधार ब्रज भाषा को बनाया है। इनकी काव्य भाषा का विश्लेषण करने पर कुछ विशेषताएं उभर कर सामने आती हैं, जैसे तुकों की सटीक योजना सूर की भाषा को संगीत धर्मी बनाती है। गीतों में सूर कथा तत्व बोलचाल की भाषा में रखते हैं। वे अपनी काव्य भाषा को ग्रामीण स्वाभाविकता के आसपास रखने के लिए लोकोक्तियों और मुहावरों का प्रयोग करते हैं। रंगों का प्रयोग वे अव्यक्त चीजों के लिए करते हैं। सूर की भाषा में संस्कृत, पाली, अपभ्रंश के अतिरिक्त गुजराती, पंजाबी, राजस्थानी आदि बोलियों तथा अरबी, फारसी एवं तुर्की के भी शब्द मिल जाते हैं।